नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन आर्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रियल वर्ल्ड इमेज शार्पनिंग विद अडोबी फोटोशॉप कैमरा रॉ एंड लाइटरूम डिजिटल फोटोग्राफी की एक तकनीकी व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। ब्रूस फ्लेजर और जेफ शेवे का यह दूसरा संस्करण इस प्रश्न पर केंद्रित है कि डिजिटल तस्वीर को स्वाभाविक दिखाते हुए अधिक स्पष्ट कैसे बनाया जाए। पुस्तक का आधार यह समझ है कि लगभग हर डिजिटल छवि में कैप्चर, स्कैनिंग, लेंस, सेंसर और आउटपुट प्रक्रिया के कारण कुछ न कुछ मुलायमपन आता है, लेकिन अंधाधुंध शार्पनिंग किनारों पर कृत्रिम हेलो, दाने और कठोर बनावट पैदा करती है। लेखक शार्पनिंग को एक अकेले फिल्टर की क्रिया नहीं बल्कि पूरी इमेजिंग वर्कफ्लो की समस्या मानते हैं। वे फोटोशॉप, कैमरा रॉ और लाइटरूम के उपलब्ध औजारों के माध्यम से सिद्धांत और प्रयोग को जोड़ते हैं। पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य पाठक को स्लाइडर के तय नुस्खे देना नहीं बल्कि छवि, विषय वस्तु और अंतिम उपयोग के अनुसार निर्णय लेना सिखाना है। इसीलिए यह पुस्तक तकनीकी रूप से गहरी है, पर इसका व्यावहारिक लक्ष्य बेहतर स्क्रीन और प्रिंट परिणाम पाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, तीन चरणों की वर्कफ्लो से शार्पनिंग को नियंत्रित करना। पुस्तक का सबसे विशिष्ट विचार मल्टीपास शार्पनिंग वर्कफ्लो है, जिसमें शार्पनिंग को कैप्चर, क्रिएटिव और आउटपुट इन तीन अलग चरणों में बांटा जाता है। कैप्चर शार्पनिंग का काम कैमरे, सेंसर, लेंस या स्कैनिंग से आई मूल नरमी की भरपाई करना है। इसे आरंभिक रॉ प्रोसेसिंग में किया जाता है और इसका उद्देश्य छवि को किसी विशेष प्रिंट या स्क्रीन के लिए तैयार करना नहीं होता। क्रिएटिव शार्पनिंग बाग का चयनात्मक चरण है, जहां फोटोग्राफर विषय के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे आंखों, वस्त्र की बनावट या वास्तु विवरण पर ध्यान निर्देशित कर सकता है। अंतिम चरण आउटपुट शार्पनिंग है, जो तस्वीर के आकार, प्रिंट प्रक्रिया, कागज और प्रदर्शन माध्यम पर निर्भर करता है। यह विभाजन इसलिए उपयोगी है क्योंकि एक ही बार में की गई शार्पनिंग को बाद में अलग करना कठिन होता है। यदि छोटी वेब इमेज और बड़े प्रिंट के लिए समान सेटिंग लगाई जाए तो एक परिणाम कमजोर और दूसरा आक्रामक हो सकता है। लेखक इस पद्धति से एक उपयोग निरपेक्ष कैप्चर शार्पन किया हुआ मास्टर तैयार करने का विचार देते हैं। इससे मूल फाइल सुरक्षित रहती है और हर नए उपयोग के लिए नियंत्रित अलग आउटपुट संस्करण बनाया जा सकता है। दूसरा, शार्पनिंग और नॉइज रिडक्शन के विरोधाभास को समझना। लेखक शार्पनिंग और नॉइज रिडक्शन के संबंध को डिजिटल इमेजिंग की कठिन समस्याओं में रखते हैं। शार्पनिंग किनारों के आसपास स्थानीय कॉन्ट्रास्ट बढ़ाकर स्पष्टता का आभास पैदा करती है। यही प्रक्रिया यदि त्वचा, आसमान या छाया जैसे समतल क्षेत्रों पर बिना नियंत्रण लागू हो तो नॉइज और दाने भी अधिक उभरे हुए दिखते हैं। दूसरी ओर, बहुत अधिक नॉइज रिडक्शन सूक्ष्म टेक्सचर और किनारों को मिटा सकता है, जिससे तस्वीर प्लास्टिक जैसी या धुंधली प्रतीत होती है। पुस्तक का व्यावहारिक तर्क है कि इन दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग स्लाइडरों की तरह नहीं, परस्पर जुड़ी हुई संपादन रणनीति की तरह देखना चाहिए। छवि की संवेदनशीलता, मूल नॉइज, विषय वस्तु और अपेक्षित आउटपुट यह तय करते हैं कि कहां नॉइज घटाना है और कहां विवरण बचाना है। चयनात्मक मास्क, सतह और किनारा आधारित नियंत्रण इसी कारण महत्वपूर्ण बनते हैं। साफ किनारों को सुरक्षित रखते हुए समतल क्षेत्रों में शार्पनिंग सीमित की जा सकती है। यह दृष्टि विशेष रूप से उच्च संवेदनशीलता वाली फाइलों, पुराने स्कैन और गहरी छायाओं वाली तस्वीरों में उपयोगी है। पुस्तक किसी चमत्कारी सेटिंग का दावा नहीं करती बल्कि बताती है कि बेहतर परिणाम संतुलन, निरीक्षण और स्थानीय नियंत्रण से आते हैं। तीसरा, फोटोशॉप के शार्पनिंग औजारों को उनके प्रभाव और सीमाओं सहित पढ़ना। पुस्तक फोटोशॉप के कई शार्पनिंग औजारों को केवल सूचीबद्ध नहीं करती बल्कि उनके नियंत्रणों के अर्थ और सीमाओं का विश्लेषण करती है। अनशार्प मास्क में अमाउंट, रेडियस और क्लेश होल्ड जैसे नियंत्रण यह प्रभावित करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट कितना बढ़ेगा, प्रभाव किनारों से कितनी दूरी तक फैलेगा और हल्के टोन अंतर पर प्रक्रिया कितनी संवेदनशील होगी। इनका संबंध समझे बिना केवल अमाउंट बढ़ाना पड़ा मोटे हेलो और खुरदरे विवरण बनाता है। स्मार्ट शार्पन अलग प्रकार की ब्लर स्थितियों से निपटने की कोशिश करता है, जबकि हाई पास और ओवरले आधारित तरीके लेयर नियंत्रण के साथ वैकल्पिक रास्ता देते हैं। पुस्तक इन विकल्पों को एक दूसरे का सार्वभौमिक विकल्प नहीं मानती, उनकी उपयोगिता छवि की संरचना और संपादन के चरण पर निर्भर करती है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी है कि शार्पनिंग का मूल्यांकन सही देखने के आकार और पर्याप्त आवर्धन पर होना चाहिए। बहुत छोटे दृश्य में दोष छिप सकते हैं और अत्यधिक आवर्धन पर सामान्य परिणाम भी जरूरत से ज्यादा तीखा लग सकता है। लेखक ल्यूमिनोसिटी ब्लेंडिंग, लेयर और मास्क के उपयोग से रंग संबंधी विकृतियों तथा अनचाहे क्षेत्रों पर प्रभाव को कम करने के तरीके बताते हैं। इस तरह औजारों की तकनीकी जानकारी वास्तविक निर्णय प्रक्रिया से जुड़ती है। चौथा, चयनात्मक शार्पनिंग में किनारों, सतहों और टोनल क्षेत्रों का उपयोग। पुस्तक का एक केंद्रीय व्यावहारिक सबक यह है कि पूरी तस्वीर को समान मात्रा में शार्पन करना अक्सर गलत है। किसी चित्र में आंखें, बाल, धातु, पत्तियां या लिखित विवरण तीखेपन से लाभ उठा सकते हैं, जबकि त्वचा, कोहरा, साफ आसमान और आउट ऑफ फोकस पृष्ठभूमि पर वही प्रभाव विचरित करने वाला होता है। इसलिए लेखक लेयर मास्क, एज मास्क और सरफेस मास्क जैसी तकनीकों पर जोर देते हैं। एज मास्क शार्पनिंग को मुख्य किनारों तक सीमित करने में सहायता करता है, जिससे समतल क्षेत्रों में नॉइज उभरने की संभावना घटती है। सरफेस मास्क इसके विपरीत कुछ बनावटों या स्थानीय क्षेत्रों पर अलग नियंत्रण की अनुमति देता है। टोनल रेंज के आधार पर भी शार्पनिंग बदली जा सकती है, क्योंकि गहरे साये और उजले हाइलाइट अक्सर शार्पनिंग के प्रति अलग प्रतिक्रिया देते हैं। यह तरीका दर्शाता है कि दृश्य तीखापन केवल तकनीकी रिजोल्यूशन का मामला नहीं है, बल्कि दर्शक के ध्यान का भी प्रश्न है। चयनात्मक शार्पनिंग से फोटोग्राफर महत्वपूर्ण दृश्य सूचना को उभार सकता है बिना पूरी छवि को कठोर बनाए। पुस्तक की तकनीकें अपेक्षाकृत विस्तृत है, इसलिए पाठक को मास्क निर्माण और लेयर आधारित संपादन में धैर्य चाहिए। बदले में यह नियंत्रण साधारण वैश्विक फिल्टर से कहीं अधिक परिष्कृत परिणाम दे सकता है। अंत में आउटपुट के आकार और माध्यम के अनुसार अंतिम तीखेपन का निर्णय पुस्तक स्पष्ट करती है कि शार्पनिंग का अंतिम प्रभाव तस्वीर के वितरण माध्यम से बदलता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली इमेज, इंकजेट प्रिंट, अलग कागजों पर प्रिंट और आकार घटाई गई वेब फाइलों की आवश्यकताएं समान नहीं होती। आकार बदलने की प्रक्रिया स्वयं पिक्सेल संरचना और सूक्ष्म किनारों को बदल देती है, इसलिए आउटपुट शार्पनिंग को सामान्यतः अंतिम आकार तय होने के बाद लागू करना तर्कसंगत है। छोटे आकार में विवरण सिमटने से चित्र को अपेक्षाकृत अलग किनारा परिभाषा की जरूरत हो सकती है, जबकि बड़े प्रिंट में बहुत चौड़ा रेडियस अप्राकृतिक हेलो बना सकता है। कागज की सतह और प्रिंटिंग की स्याही भी दृश्य तीखेपन को प्रभावित करती है, इसलिए स्क्रीन पर संतोषजनक दिखने वाली सेटिंग प्रिंट में पर्याप्त नहीं भी हो सकती। लेखकों की रणनीति का लाभ यह है कि कैप्चर स्तर पर बना मास्टर कई आउटपुट जरूरतों के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हर उपयोग के लिए नई नियंत्रित अंतिम शार्पनिंग की जाती है। यह तरीका फाइल प्रबंधन को भी अधिक अनुशासित बनाता है, क्योंकि संपादित मास्टर और माध्यम विशिष्ट प्रतियां अलग रहती है। पुस्तक इस प्रक्रिया को तकनीकी चेकलिस्ट नहीं, परीक्षण और दृश्य मूल्यांकन वाली उत्पादन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष में, रियल वर्ल्ड इमेज शार्पनिंग विद अडोबी फोटोशॉप, कैमरा रॉ एंड लाइटरूम उन फोटोग्राफरों, रिटचरों और डिजिटल प्रिंट पेशेवरों के लिए सबसे उपयोगी है जो शार्पनिंग को अनुमान से नहीं समझ के साथ करना चाहते हैं। विशेष रूप से यह उन पाठकों के काम की है जो रॉ फाइलों से काम करते हैं, फोटोशॉप में लेयर और मास्क का उपयोग कर सकते हैं, या प्रिंट और स्क्रीन के लिए नियमित रूप से अलग फाइलें तैयार करते हैं। शुरुआती पाठक को इसकी तकनीकी गहराई चुनौतीपूर्ण लग सकती है, क्योंकि पुस्तक केवल त्वरित प्रीसेट नहीं देती। फिर भी जो व्यक्ति नियंत्रणों के पीछे का तर्क समझना चाहता है, उसके लिए यही गहराई इसका मुख्य लाभ है। पुस्तक का व्यावहारिक फायदा यह है कि पाठक ओवर शार्पनिंग, हेलो, रंग विकृति और बढ़े हुए नॉइज जैसे दोषों को पहचानना सीखता है, साथ ही उन्हें रोकने के लिए कार्य प्रवाह विकसित कर सकता है। समान विषय की कई मार्गदर्शिकाएं किसी एक फिल्टर या कुछ स्थिर सेटिंग पर केंद्रित रहती हैं। यह पुस्तक उससे अलग है, क्योंकि यह शार्पनिंग को कैप्चर की गुणवत्ता, स्थानीय विषय वस्तु, नॉइज नियंत्रण और अंतिम आउटपुट के साझा निर्णय के रूप में देखती है। सॉफ्टवेयर के कुछ विवरण समय के साथ पुराने हो सकते हैं, पर कैप्चर, क्रिएटिव और आउटपुट शार्पनिंग का वैचारिक ढांचा आज भी उपयोगी है। इसी कारण यह केवल कमांड सिखाने वाली किताब नहीं, बल्कि बेहतर इमेज मूल्यांकन की संदर्भ पुस्तक बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ब्रूस फ्रेजर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।